खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, कलामे खुदा को पढ़ रहा था, तो मेरे जहन में एक बात आई कि इस महीने में हम स्टडी कर रहे हैं इफ्सियों के खत में से, उन बुनियादी सच्चाइयों को सीख रहे हैं कि ईमानदारों को क्या मुनासिब है, कि उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि आसमान पर हमें जब हम यीशु मसीह की हजूरी में होंगे बताया जाएगा, हमें पता चलेगा कि किस तरह उसके हजूर में बैठना है, खड़े होना है, प्रस्तुति करना है, सारी अबदियत में हमेशा हमेशा किस तरह उसकी हजूरी में रहना है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आने वाले दिनों में हम उन नबूवतों पर गौर करें जो खुदावंद यीशु मसीह की जात के बारे में कही गई थी, की गई थी नबियों के बारे में, बारे वसीला से कि यीशु मसीह कहाँ पर पैदा होगा, उसे किन किन दुखों का सामना होगा, कहाँ पर उसकी पैदाइश होगी, पहली नबूवत कौन सी थी, कहाँ कहाँ पर वो नबूवतें पूरा हुई। सो मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें ताकि खुदा की रहनुमाई में आपकी तरक्की के लिए जो बेहतर है खुदावंद की आवाज़ को सुनकर आप तक पहुँचाया जाए। क्योंकि हम इफ्सियों के खत में से ईमानदारों के बारे में, अपने बारे में कि हम जमीन पर किस तरह जिंदगी गुजारें सीख रहे हैं। क्योंकि आसमान पर जब हम जाएंगे वहां पर कामल होंगे, वहां पर हमें बार बार सिखाया नहीं जाएगा, हमें सब समझ आ जाएगी, लेकिन जमीन पर रहते हुए हमें बहुत सी सच्चाइयां सीखनी जरूरी है। सो मैं चाहता हूं कि हम अपने सिलसिला को जारी रखते हुए इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पांचवा बाप, उसकी पांचवी आयत में से चंद एक बातें सीखें, अपनी मेराज के बारे में, और मेराज के साथ साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने छोड़ दी थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन पर गौर किया जाए। जब इफ़सियों पांच बाप उसकी पांचवी आयत को पढ़ते हैं तो पालूस रसूल कहता है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की, जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मेरास नहीं। और छठी आयत में कहता है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजल होता है। हम सीख रहे हैं खुदावंद के कलाम में से कि ईमानदार अपनी मेराज जमीन पर बनाए, कि जब जो कुछ हम यहां जमीन पर कमाएंगे वो आसमान पर हमारे लिए मुहैया किया जाएगा, हमें मिलेगा। और कल हमने देखा था पालूस रसूल की जिंदगी में से, पालूस रसूल नसीहत करते हुए अपने फर्जंद तमोथियस को, उसका रूहानी शिगिर्द, उसका मानने वाला कह सकते हैं, उसका खिदमतगार बंदा, जिसे वो रूहानी फर्जंद का नाम देता है, उसे सिखाते हुए कहता है कि मैंने दौड़ को अच्छी तरह दौड़ा है, मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल कर लिया है, अब मेरे कूच का वक्त आ चुका है, इसलिए आसमान पर मेरे लिए क्या रखा है, रासबाजी का ताज रखा हुआ है। सो ईमानदारों के लिए जमीन पर यही मौका है कि यहां पर रहते हुए हम उन तमाम अजरों को, उन बदलों को, उन सिलों को हासिल करें। इसलिए मुकद्दसों को क्या मुनासिब है, सो क्या लिखा है, हरामकार। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ग्रंथियों के खत में ईमानदारों में ये बात पाई जाती थी, उस कलीसिया में जो उस दौर में थी, उनमें जो बदी और बदकारी, हरामकारी का लफ्ज़ यानी कि बदी बदकारी, यानी कि वो काम करने जो खुदा को या इंसान को पसंद ना हो, और उस कलीसिया में क्या पाया जाता था, कुछ लोग पाए जाते थे, खासल खास पालूस इसका जिक्र करता है इस खत में, कि उसके तल्लुकात अपनी मरतई, जिसे कह सकते हैं कि दूसरी माँ के साथ बुरे थे, वो बदकारी में पड़ा हुआ था। तो ऐसे लोगों की क्या है, आसमान पर कोई मेरास नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में कुछ मेरास, कुछ हिस्सा नहीं। वो ईमान के बायस हमेशा की जिंदगी के वारस तो हैं, लेकिन उनको कोई अजर नहीं मिलेगा। सो बदकारी, फिर कहता है कि नापाकी, यानी कि ऐसी नापाक जिंदगी, ऐसी नापाक जिंदगी जो खुदा को पसंद नहीं, जिसमें गुनाह आलूदा जिंदगी गुजारना है। इस नापाक जिंदगी में कह सकते हैं कि बहुत से नापकीजा काम हैं जो इंसान करता है। मिसाल के तौर पर मेरे साथ देखे रोमियो, रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब, रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत उसका पहला बाब, जब हम उसकी 24वीं आयत से पढ़ते हैं तो 24वीं आयत में उन लोगों का जिक्र मिलता है जो नापाक जिंदगी बसर करते हैं, और उनकी सजा और उनकी नापाकी के बारे में कहा गया है। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया, ताकि उनके बदन आपस में बेहरम किए जाएं। और बेहरम कैसे हुए? ऐसा दौर आया जैसे कि हम सादम और गमूरा, यानी के सालम और गमूरा के इलाका में देखते हैं। इंसानों ने इंसानों के साथ बेहयाई के काम किए, औरतों ने औरतों के साथ नापाकी के काम किए, जानवरों के साथ उन्होंने नापाकी के काम किए। सो ऐसे लोगों का खुदा की बादशाही में कोई हिस्सा नहीं है। सो यहां पर उनकी सजा क्या है कि खुदा ने उनको उनके हालात पर छोड़ दिया। जब आप इस 25वीं और आगे आने वाली आयात को पढ़ते हैं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की बानिस्बत उस खालक के जो अब तक माबूद है। उन्होंने खुदा को छोड़कर खुदा के बनाए हुए उस निजाम को अपना खुदा बना लिया। सो नापाकी की जिंदगी के बारे में हमें बहुत कुछ जिक्र मिलता है, और नापाकी की जिंदगी कहां तक लेके जाती है? इसी सबब से खुदा ने उनकी गंदी शहवतों में उनको छोड़ दिया, और यहां तक लिखा है कि उन्होंने इंसानों ने उस दौर में क्या हुआ कि मर्द और औरत ने जो खुदा ने निजाम बनाया था उसके उलट काम करना शुरू कर दिए। नापाकी की हद यहां तक बढ़ गई। सो सदूम और अमूरा में भी ऐसा ही हुआ कि पूरे दोनों इलाकों में सिर्फ एक खानदान था लूत का, और आज के दौर में हालात कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, और कह सकते हैं कि हो चुके हैं कि बदी का ढोल हर जगह बजाया जाता है। हमें ईमानदार होते हुए पालूस रसूल कहता है इन बातों में हिस्सादार नहीं होना। और अगली बात क्या कहता है? नापाकी और या लालची की जो बुतपरस्त के बराबर है। बुतपरस्त से मुराद यानी कि कोई शख्स किसी भी चीज को अपना खुदा या माबूद बना ले, ना कि सिर्फ यही कि किसी तस्वीर के आगे खा वो हिंदू खुदा हो, खा वो पाकिस्तान में कोई देवी देवता हो, या फिर कोई और। जब हम उसके आगे झुककर खुदा को छोड़कर सजदा करते हैं तो खुदावंद खुदा कहता है कि ऐसे लोगों की मेरी बादशाही में कुछ मिरास नहीं। क्या लिखा है? बुतपरस्त, बुतपरस्त से मुराद, बुतपरस्ती बहुत सी सूरतों में हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है। किसी चीज का हद से ज्यादा किया जाना या किसी चीज को खुदा से ज्यादा दर्जा देना, वो बुतपरस्ती है। अगर खाने पीने की चीजों को हम सबसे आला दर्जा देना शुरू कर दें, खुराक को सबसे ऊपर रख लें अपनी लिस्ट में, बजाय के किसी पर रहम करना, किसी के साथ अपना खाना शेयर करना, किसी को प्यार करना, अगर खुराक को हम अपनी लिस्ट में ऊपर रख लें तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? बुतपरस्ती। अगर हम किसी भी तस्वीर को, किसी भी बुत को, जिसके बारे में खरूज की किताब 20वें बाब में हमें ये जिक्र मिलता है कि तू कोई तराशी हुई मूरत, جو آسمان پر یا زمین کے نیچے ہے اسے سجدہ نہ کرنا. سو ایمانداروں کو پالوس رسول کہتا ہے کیونکہ افسس شہر جو ارتمس دیوی کا بہت بڑا مندر تھا وہاں پر بت پرستی شریعام پائی جاتی تھی. ارتمس دیوی کے جو بت بنتے تھے وہ سونے کے بت بنتے تھے, لوگ خریدتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے. تو انہی لوگوں کو, ایمانداروں کو جو ایک دفعہ ایمان لے آئے, جو ایک دفعہ میں ہو سکتا ہے افسس کے رہنے والے یونانی ہو, عبرانی ہو اور کوئی ہو, ان سب کو جو یسوع پر ایمان لے آئے ان کو وہ مسیحیوں کو کیا کہتا ہے؟ مسیحیوں میں بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ اگر ہم کریں گے تو سزا کے ساتھ ساتھ کیا ہے, اپنی میراث کو کھوئیں گے. اس کے لیے خداوند کا بندہ پالوس رسول ہی کرنتھس کی کلیسیا کے وسیلہ سے ہم سب کو نصیحت کرتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب. 10واں باب میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمانداروں کو ہمارے باپ دادا کی مثال دیتا ہے. ہمارے باپ دادا ایمان میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ پرانے عہد نامہ میں جیسے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ, ابراہام, اسحاق, یعقوب, ان سب کی وہ مثال ان کو دیتے ہوئے 11ویں آیت میں یہ باتیں کہتا ہے. میرے ساتھ 7ویں آیت دیکھیں. 7ویں آیت میں کہتا ہے, تم بت پرست نہ بنو جس طرح ان میں سے بن گئے تھے. تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے. چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے پھر ناچنے کودنے کو اٹھے. پرانے نامہ میں وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کھایا, انہوں نے خوب کھانا پینا, یعنی کہ شراب پی, میں پی اور اپنے آپ کو نشے میں گل کر لیا اور ناچنے کودنے کو جب وہ اٹھے تو انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ کون کس کی بیوی ہے, کیا ہے. انہوں نے نشے میں اس بدکاری کو کیا. اور انہوں نے ہارون کے ساتھ مل کر, جب موسیٰ وہاں پر نہیں تھا, کیا کیا؟ ایک بچڑا بنا لیا, ایک بیل بنا لیا, اس گھاس کھانے والے ایک گاؤں گائے کو انہوں نے کیا, اس کی پرستش کی. ہندو مذہب کہاں سے آیا ہے؟ انہی پرانے عہد نامے کے ان معبودوں میں سے. سونے کا بچڑا گائیں کو بنا کر کیا سجدہ کیا. اور 11ویں آیت میں لکھا ہے, پالوس کہتا ہے ایمانداروں سے, یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقعہ ہوئیں. کیا ہوئیں؟ مارے گئے لوگ جنہوں نے حرام کاری کی, جنہوں نے بت پرستی کی, جنہوں نے خدا کو ازمایا, 30,000 لوگ مارے گئے ایک ہی دن میں. تو یہ مثالیں ہم سب کے لیے لکھی گئی ہیں. 11ویں آیت میں لکھا ہے, یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقعہ ہوئیں اور ہم اخیر زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی. ہم اخیر زمانے والوں کی نصیحت کے لیے لکھی گئی ہیں. کس لیے لکھی گئیں؟ تاکہ ہم اپنا اجر نہ کھوئیں. جیسے ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے موسیٰ اور اس کے ساتھ لوگوں نے کیا کی تھی؟ خدا کی نافرمانی کی تھی نا جی. 40 دن کا سفر 40 سال میں کیوں بدلا؟ نافرمانی, بت پرستی, خدا پر بڑبڑانا, اور وہ اس ملک میں شامل نہ ہو سکے اور اس میراث کو حاصل نہ کر سکے جہاں پر شہد اور دودھ اور بہت سے میوہ دار چیزوں کا خدا نے وعدہ کیا تھا. اسی طرح ایمانداروں کے لیے بھی, جب ایماندار بت پرستی میں, لالچ میں, ان باتوں میں جو خدا کو پسندیدہ ہے نہیں ہے زندگی گزاریں گے تو اپنی میراث کو نقصان پہنچائیں گے. میری یہ دعا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری میراث آسمان پر بہت زیادہ ہو. آپ بھی سب یہی چاہتے ہیں نا جی. کوئی نہیں چاہتا کہ ہم خالی ہاتھ اس بادشاہ کے حضور جائیں. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان سب نے जिनको ताज मिले उन सब बुजुर्गों ने अपने ताज उतार कर बादशाहों के बादशाह के तख्त के सामने रख दिए। और मैं यकीन से कह सकता हूँ आप में से कोई भी नहीं चाहता कि जब यीशु मसीह की हजूरी में जाएं खाली हाथ जाएं। कहीं कोई चाहता है खाली हाथ जाएं? क्या मायूसी और दूसरे जितने भी अहले मशरक से आने वाले वो तमाम दानश्वर लोग थे वो खाली हाथ आए बादशाह के हजूरी में? नहीं, सोना मोर और लुबान लेकर आए। सो बादशाह की हजूरी में जब भी कोई जाता है खाली हाथ नहीं जाता। जैसे हमारे रिवाज में किसी के घर में मेहमान के तौर पर जाएं तो हम फ्रूट मिठाई या कोई ना कोई चीज़ सौगात लेकर जाते हैं ताकि कहें कि वाह बहुत अच्छी बात। जब हम खाली हाथ जाएं उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन बाद में इन्होंने तो कुछ पता ही नहीं खाली हाथ ही आ गए मेहमान नवाजी या लेना देना। सो आप में से और मैं ये नहीं चाहता कि हम जब यीशु मसीह की हजूरी में जाएं खाली हाथ हों। सो ईमानदारों को क्या मुनासिब है? खुदावन खुदा के साथ पूरे दिल पूरी जान पूरी अकल से मोहब्बत रखना और इन बातों से बचना जो सालम जो सदूम और अमूरा में हुई, जो बियाबान में बनी इसराइल कौम ने की, वो तमाम वाकयात आपके लिए और मेरे लिए लिखे गए हैं ताकि आज हम उसे ना करें। इसलिए मुझे नहीं पता कि आज आपकी और मेरी ज़िंदगी में, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी बात है जो आपको बुतपरस्ती की तरफ लेके जाती है। वो बुतपरस्ती किसी मुर्दा शख्स की हो सकती है, किसी पीर की हो सकती है, किसी चीज़ की खाने की, और बहुत दफ़ा लालच जो के बुतपरस्त के बराबर है हो सकती है। इसलिए ईमानदारों हम सबको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि कोई ऐसी बात हमें हमारी मीरास खोने का वसीला ना बने। मेरे साथ एक हवाला देखें, मीरास में ये बात पाई जाती है, मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब। मेरे साथ 3 बाब देखें। हमने इफ़सियों के खत में इफ़सस की कलीसिया को देखा था कि फरदौस में खुदा के तख्त के सामने उस दरख्त के में से जिंदगी का खाने का फल मिलेगा। दूसरे बाब को ही देख लेते हैं, यहां पर ही देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहां कहा गया है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? मुकाशफा 2 बाब उसकी 11 आयत। यहां पर जिंदगी का ताज देने के लिए कहा गया है। ये ताज खुदावंद की हजूरी में उतार कर उसे पेश किया जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है? क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा तक याद रखे जाएं? कौन कौन चाहता है कि आप हमेशा तक याद रखे जाएं? मैं चाहता हूं कि जमीन पर से जाने के बाद हमेशा हमेशा मेरी याद रहे। सो इसके लिए खुदावन खुदा कहता है, मुकाशफा 3 बाब, ये सरदीस फिलदिफिया की कलीसिया के बारे में बात कही गई है। जब 11वीं आयत को देखते हैं तो यहां पर लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। हम जो कुछ करेंगे नेकी जितनी भी करेंगे उसे जब खुदा की हजूरी में दुरुस्त तरीके से करेंगे तो कोई उसे छीन नहीं सकता। वही बात आ गई कि हमारी मीरास हमसे छीनी जा सकती है। मिसाल के तौर पर ये 6-7 किले हैं लाले के, 100 साल स्कीम ख़त्म होगी तो उसके बाद गवर्नमेंट इसे ले सकती है। या हमारा घर है, अगर कोई तसबगीरी से उस पर कब्जा करे तो वो छीन सकती है। वैसे ही खुदावंद खुदा फरमाते हैं कि मैं जल्द आने वाला हूं, इसलिए क्या लिखा है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो गालब आए उसे मैं अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि खुदा के घर में सतून बने? मैं चाहता हूं। सतून बनने से यह मुराद नहीं कि आप एक सतून बन के खड़े रहेंगे, कि आपके ऊपर ईंटें लगा दी जाएंगी जैसे और आपका सर वहां पर लगा होगा। नहीं, सतून से मुराद यादगारी के तौर पर, जैसे फौजी जब जंग लड़ के आता है तो उसकी तख्ती लिखी जाती है। तो जब हम अपने घर को आसमानी खुदा के हुजूर लौटेंगे तो आसमान पर सतून बनेंगे, हमारी यादगारी के तौर पर वो तमाम बातें लिखी जाएंगी जो हम इस जमीन पर यीशु मसीह के लिए करते हैं। और क्या कहा गया है, वो फिर कभी बाहर ना निकलेंगे और मैं अपने खुदावन खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। खुदावन यीशु मसीह के दक्षत होंगे कि ये मेरा सूरमा है, जंगजू बेटी बेटा। सो इसलिए पौलुस रसूल क्रंथस की कलीसिया से कहता है, बुत परस्ती से भागो। अगर हमारी जिंदगी में आज किसी किस्म की बुत परस्ती है तो उसे छोड़कर इस बात को याद रखें कि हमें आसमान पर बहुत बड़ा अजर मिलेगा और वो अजर सतून की मानद हमेशा हमेशा हमारी याद रहेगी। उस पर हमारे तमाम वो अच्छे ईमान लिखे जाएंगे और फिर यीशु मसीह उस पर दस्तखत करेगा कि हाँ ये दुरुस्त है। खुदा का नाम, उसे नया नाम लिखा जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये मेरे साथ हो। क्या आप सब इस बात के लिए खुश हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो? होना चाहिए, क्योंकि यही जमीन पर हमारा मकसद है कि जब उसकी हजूरी में जाएं खाली हाथ ना हो। वो हमें ये ना कहे शाबाश 10 शहरों पर, वो बल्कि ये ना कहे कि इससे जो है वो भी ले लो, बल्कि ये कहे शाबाश मेरे वफादार बेटे और बेटी। इसलिए आए हम खुदावंद के हजूर झुकें। इसलिए रासबाजों को प्रस्तुत करना जेबा है उस अनदेखे खुदा की, ना के रासबाजों को बुतपरस्ती करना। तो बुतपरस्ती बहुत सी सूरतों में है, किसी तस्वीर की, किसी मूरत की, खाने की, कोई ऐसी ख्वाहिश जिसे हम खुदा से आला दर्जा देते हैं उसे बाइबल मुकद्दस बुतपरस्ती कहती है, ना के खुदा की इबादत। लश्करों के रब, आज के कलाम के वसीला से हम सब की रहनुमाई कर, ताकि हम जो कुछ भी सीख चुके हैं हम सब के लिए बरकत का बायस बने।